ओम शांति। साइलेंस में बैठेंगे। Sit back, comfortable, straight. Reflect. बहुत कुछ भरा है अपने अंदर दो दिन में। इस दो दिन में बहुत कुछ भरा है अपने अंदर। अब उसको इंप्लीमेंट करना है। अपने लिए चेक करें। अपने लिए चेक करें। यहां से जाकर परसों इमीडिएट एप्लीकेशन कौन सी है अपने लिए, अपने कर्म क्षेत्र के लिए, अपने परिवार के लिए। वी हैव टू सिलेक्ट इट, स्पेसिफाई इट बिफोर वी लीव फ्रॉम हियर। जीवन में कई बार ऐसी बातें आती हैं, सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि मन कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। क्या सोचा था और क्या हो गया। कभी कभी तो कुछ नहीं सोचा था और फिर भी इतना कुछ मिल गया, और कभी कभी बहुत मेहनत की और फिर भी उतना नहीं मिला। ये ऐसे कैसे होता है। कभी किसी पर बहुत विश्वास किया और फिर भी धोखा मिला, और कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया और उन्होंने मुझे इतना सहयोग दिया। ये ऐसे कैसे होता है। हर रोज दुख और दर्द में मेरे सामने जब लोग आते हैं तो मेरा मन ये कहता है ये ऐसा क्यों होता है, क्यों इनके साथ ऐसा हुआ। इलाज सारा ठीक हो जाता है, हमें लगते हैं वो ठीक हो गए, और फिर कुछ हो जाता है। ये ऐसा कैसे हो जाता है। हमारा भाग्य कौन लिखता है। और अगर मुझे अपने भाग्य में परिवर्तन लाना है तो मुझे किसके पास जाना है? भगवान को भाग्य विधाता कहा जाता है। क्या भगवान मेरा भाग्य लिखता है? अगर भगवान मेरा भाग्य लिखता है तो इतनी दुख, दर्द, तकलीफें क्यों लिखता है? अपने मन से प्रश्न कीजिए, अगर भगवान सबका भाग्य लिखता है, अगर भगवान सबका भाग्य लिखता है तो हर एक का भाग्य कैसा होगा? Everything is happening according to God's will. We believe, we choose something else, but destiny has something else to offer, and we say it was God's will. Kya Bhagwan Bhagya likhta hai? Agar Bhagwan Bhagya likhta hai, to har ek ka Bhagya kaisa hoga? अगर भगवान भाग्य लिखता है तो इस सृष्टि का भाग्य कैसा होगा? ये दुनिया कैसी होगी अगर भगवान इसका भाग्य लिखता है? Everything is happening according to God's will. पत्ता पत्ता भी ईश्वर की मर्जी से चलता है. Man proposes and God disposes. Right है ना बात? Right है बात? Right है बात? Everything is happening according to God's will. Right है बात? सोचना चाहिए. बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, बचपन से सुनते आए हैं, तो कोई भी बात जब बचपन से सुनी होती है तो वह हमारे अंदर बहुत डीप इनग्रेंड होती है। इसीलिए कभी भी कुछ होता है तो मुख से इमिजिएटली निकल जाता है ईश्वर की मर्जी, विच मीन्स ये जो हुआ वो किसकी मर्जी से हुआ, ईश्वर की मर्जी। हम कभी ये रुक के नहीं चेक करते क्या ईश्वर की मर्जी से ये बीमारियां ईश्वर की मर्जी से हो रही होंगे। अगर आपकी मर्जी होती तो आपका बच्चा साल में कितनी बार बीमार पड़ता? आपकी मर्जी होती तो आपका बच्चा साल में कितनी बार बीमार पड़ता? कभी नहीं होता। अगर आपकी मर्जी होती तो आपको आपके हॉस्पिटल में जितनी बीमारियां दिख रही हैं उसमें से आप अपने बच्चे के भाग्य में कौन सी लिखते हैं? कोई नहीं लिखते। उसको हम रोज कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तू कृपा का सागर है, तू कल्याणकारी है, और फिर वो हमारे भाग्य में ऐसी बीमारियां लिखता है क्या? वो हमारे भाग्य में ऐसी बीमारियां लिखता है कि बच्चा पैदा ही बीमारी के साथ हुआ है, ये भगवान की मर्जी से। अगर हम अपने बच्चे का भाग्य लिखते तो कैसा भाग्य लिखते? एक वर्ड में परफेक्ट। और अगर वो हमारा भाग्य लिखे तो कैसा भाग्य लिखे? परफेक्ट। तो अगर ये सृष्टि परमात्मा की मर्जी से चल रही होती तो डॉक्टर तो होते ही नहीं। जब आप अपने बच्चे के भाग्य में बीमारी नहीं लिखेंगे तो वो हमारे भाग्य में बीमारी क्यों लिखेगा? और डे बाय डे बीमारियां भी कैसी, कॉम्प्लिकेशंस भी कैसी। तो क्या भगवान का मूड खराब है जो ज्यादा खराब भाग्य लिख रहा है आजकल? क्या हो गया उसको? पहले तो फिर भी थोड़ी थोड़ी थी, अब तो देखो क्या क्या हो रहा है। आज एक बच्चा अपने घर में सेफ नहीं है, ये इसका भाग्य भगवान लिख रहा है बैठकर ऊपर से। एक बहन घर से निकल रही है वो सेफ नहीं है, ये भगवान लिख रहा है ऊपर से बैठकर। केरला में फ्लड आया, इतना कुछ हो गया, ये भगवान की मर्जी से, भगवान की मर्जी से। इतने घर, इतने परिवार, उसकी मर्जी से, ऊपर से बैठकर। तो हम एक बार भी नहीं सोचते हैं कि हम क्या बिलीव कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये भगवान की मर्जी से हो रहा है। भगवान की मर्जी से होता तो ये दुनिया परफेक्ट, परफेक्ट और सिर्फ परफेक्ट होती है। तो फिर ये सब कुछ किसकी मर्जी से हो रहा है? तो ये सब कुछ किसकी मर्जी से हो रहा है? दो ही बिलीफ सिस्टम है, बचपन से सुने, चेक करना है, सिलेक्ट करना है और अच्छे से पकड़ लेना है। दो बिलीफ सिस्टम है, हम दोनों को सच मानते आए हैं, लेकिन दोनों राइट नहीं हो सकते, दोनों में से एक ही राइट हो सकता है। एक बिलीफ सिस्टम ये है, जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। दूसरा बिलीफ सिस्टम ये है, जैसा कर्म वैसा फल, कॉन्सिक्वेंस। हमने दोनों बिलीफ सिस्टम बचपन से सुने, ईश्वर की मर्जी से और मेरे कर्मों का फल, दोनों सुने और दोनों के लिए कहा हां जी। दोनों सुने और दोनों के लिए कहा हां जी। दोनों कैसे हो सकते हैं? मेरे जीवन में जो हो रहा है वो या तो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, या मेरे जीवन में जो हो रहा है वो मेरे कर्म का कॉन्सिक्वेंस है। दोनों बातें राइट कैसे हो सकती हैं? टुमारो आई फॉल इल, वो मेरे कर्मों का कॉन्सिक्वेंस है या वो भगवान की मर्जी से हो रहा है? मेरा कर्म का कॉन्सिक्वेंस मीन्स मैंने ध्यान नहीं रखा, मैंने अपने हेल्थ को निग्लेक्ट किया, मैंने अपने इमोशंस को क्लीन नहीं किया, स्ट्रेस क्रिएट किया, मेरी बॉडी में इलनेस मैनिफेस्ट हुई, तो कल मैं बीमार हूं वो मेरे कर्मों का कॉन्सिक्वेंस है या भगवान की मर्जी से? अगर भगवान की मर्जी से भाग्य लिखा जा रहा होता तो एक, सबका भाग्य परफेक्ट होता, एंड दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, हम सबका भाग्य इक्वल होता। एक का ऐसा और एक का ऐसा नहीं हो सकता। माता पिता कभी बच्चों के भाग्य में मतभेद नहीं करेंगे, एक को ज्यादा दूसरे को कम। आप कर सकते हैं अपने दो बच्चों के बीच में ऐसा? नहीं कर सकते, वो कैसे करेगा? आपके सामने है, कोई आता है जो 100 साल की आयु में भी निरोगी है, और कोई आता है जो बच्चा पैदा ही बीमारी के साथ हुआ है। दोनों के भाग्य में फर्क देखो कितना है, फर्क है या नहीं है? तो अगर परमात्मा भाग्य लिख रहा है तो वो दो लोगों के भाग्य में इतना फर्क लिखेगा किस बेसिस पे? किस बेसिस पे? अगर हमारा भाग्य हमारे कर्मों से बनता है तो हमारे कर्म इक्वल नहीं है, तो हमारा भाग्य भी इक्वल नहीं हो सकता। और हमारे सारे कर्म परफेक्ट नहीं है तो हमारा भाग्य भी परफेक्ट नहीं होता है। तो आज दो बिलीफ सिस्टम में से एक चूज करना है, दूसरा छोड़ना है। जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है परमात्मा की मर्जी से या मेरे कर्मों का कॉन्सिक्वेंस? बताइए। नहीं, सोच के, आराम से सोच के, बिकॉज वंस एंड फॉर ऑल इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज रिपीटेड अफर्मेशन, हमने तो ट्राई किया बाकी भगवान की मर्जी, हमने तो कर लिया परमात्मा की मर्जी कुछ और होगी। नहीं, परमात्मा की मर्जी नहीं। ये शब्द ही अपनी वोकैबुलरी से निकलना पड़ेगा, नहीं तो उस एक शब्द के कारण हम भगवान से भी डरते रहते हैं कि भगवान मेरे भाग्य में कुछ गलत ना लिखते। तो जो कुछ हो रहा है वो, जो कुछ हो रहा है वो, तो जब भी मन क्वेश्चन करे कि मैंने तो इतनी मेहनत की, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उंगली कहां जाने है? उंगली कहां जाने है? आज से वहां उंगली नहीं करना उस चीज के लिए, जस्ट बिकॉज वो नीचे आके बता नहीं सकता ना कि मैंने नहीं किया था ये, हर टाइम उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से। ब्लेम करने से पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्सनल पावर टू रेक्टिफाई व्हाट इज हैविंग फिनिशेस। उसकी मर्जी से हुआ तो रोज सुबह उसको बोलते रहते प्लीज ठीक कर देना, प्लीज ठीक कर दे, प्लीज ठीक कर दे, और इंसेंटिव भी देते हैं साथ में, आप ठीक कर दोगे तो, आप ठीक कर दोगे तो मैं इधर आऊंगी, मैं ये व्रत करूंगी, मैं ये प्रश्न, अगर आप ठीक कर दोगे तो, और नहीं ठीक किया तो मैं क्यों करूं? तो ये सारी चीजें परमात्मा के साथ के रिश्ते को भी क्या बना देती है? एक प्यारा लविंग रिश्ते की बजाय ये भी एक क्या बनने लग जाता है? ये भी एक बिजनेस की तरह होने लगता है। हम उससे डरने लगते हैं कि ये कर लो, ये व्रत रख लो, कहीं वो नाराज हो गया तो मेरे भाग्य में गड़बड़ कर देगा वो कुछ। हर चीज जो करते हैं वो विद अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्यार और भावना से होनी चाहिए, तब उसकी ताकत मिलेगी। डर से करेंगे, आपके पास कितनी बार होता होगा कोई पेशेंट आया, आपने उसको कहा आप है ना इस साल नवरात्रि के व्रत मत रखना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वो कहेंगे नहीं डॉक्टर साहब, व्रत तो रखना ही है। आप कहेंगे अभी नहीं रखो, ये साल आप नहीं रखो। कहेंगे नहीं, देवी नाराज हो जाएगी, व्रत तो रखना ही है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्योंकि डीप इनग्रेन्ड है कि भगवान और देवी देवताएं नाराज हो जाते हैं, और जब वो नाराज हो जाते हैं तो वो उनका मूड खराब हो जाता है, तो वो ऊपर से बैठ के हमारे भाग्य में कुछ गड़बड़ लिख देते हैं। कैसा सोचते हैं यहां हमने 3 दिन में इतने प्यार से गुस्सा छोड़ दिया, वो अभी तक गुस्सा कर रहे हैं, वो अभी तक नाराज हो रहे हैं, वो भगवान कैसे हो सकता है फिर? शांति का सागर है और उसको हम कहते हैं वो नाराज हो जाए, एंड देन वी से आई एम अ वेरी गॉड फियरिंग पर्सन। हाउ कैन वी फियर गॉड? इफ देर इज वन हुम वी शुड नेवर फियर, इट्स गॉड, बिकॉज ही नेवर गेट्स एंग्री। ही इज अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। जब कोई अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस दे, उससे कभी डरना नहीं चाहिए, उससे तो सिर्फ प्यार करना चाहिए। तो जो कुछ मेरे भाग्य में है वो किसकी मर्जी से? उंगली रखें जरा उन पे, गुड। और अब ठीक करना तो किसके पास जाना है? गुड। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आज जो क्लेम करेंगे कि वो आपका भाग्य ठीक कर सकते हैं। आप ये कर लो, आपका भाग्य ठीक हो जाएगा। आप ये कर लो, वो बात खत्म हो जाएगी। आप अपना घर बदल लो, नंबर बदल लो, रंग बदल लो, नाम बदल लो, सब कुछ बदल लो। साइंस है, वो सब साइंस है, लेकिन हर साइंस की एक लिमिटेशन है। आप एक घर में रहते हैं, कोई आपको कहता है इस कमरे में आप रहते हो ना, इसलिए आपका झगड़ा होता रहता है, कमरा बदल दो। आप कहते हो कमरा क्या बदलना, घर बदल लेते हैं, वो भी एक तरीका है। और दूसरा तरीका है, हम इसी घर में रहेंगे और इसी कमरे में रहेंगे और हमारा कभी झगड़ा नहीं होगा, ये भी एक ऑप्शन है। कौन सा वाला इजी है? घर बदलना। कितने घर बदलेंगे, कितने हॉस्पिटल बदलेंगे, कितने स्पाउस बदलेंगे, सिर्फ क्योंकि इजी वाला काम नहीं किया। हम बदलेंगे। सोल एनर्जी एंड गॉड्स एनर्जी इज हायर देन एनी अदर एनर्जी ऑन दिस प्लैनेट। चाहे वो प्लैनेट्स की एनर्जी है, चाहे वो नंबर्स की एनर्जी है, चाहे वो डायरेक्शंस की एनर्जी है, सारी चीजें एनर्जी हैं, सब साइंस है, लेकिन उसके पीछे थॉट पावर उससे ऊपर है। प्लैनेट्स का प्रभाव हमारे संस्कारों पर पड़ता है, इसीलिए हम कहते हैं ये दशा है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन प्लैनेट्स का प्रभाव किस पर? हमारे संस्कारों पर। संस्कार बदल लो, प्लैनेट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए वो हॉरोस्कोप हमेशा राइट नहीं निकलता है, कभी कभी राइट निकलता है, कभी कभी राइट नहीं निकलता है, क्योंकि जो संस्कार बदल दिए उसके वाली वो भविष्यवाणी राइट नहीं निकलेगी। तो भाग्य बदलने के लिए किसके पास जाना है? किसके पास जाना? अपने पास। ये लाइन बचपन से मालूम है कि जैसा कर्म वैसा फल, लेकिन क्या उस लॉ को, वो एक लॉ है, लॉ ऑफ कर्मा, क्या उस लॉ को सारा दिन जीवन में पकड़ कर चल रहे हैं क्या? कि जो कर्म मैं आत्मा करूंगी, इस कर्म का कॉन्सिक्वेंस है। एक एनर्जी का डायरेक्शन आज सेट कर लेंगे और एक भी क्षण जीवन में नहीं होना चाहिए जब ये वाली बात याद ना हो, क्योंकि जिसको ये बात याद रहेगी उसका भाग्य हमेशा स्मूथ। जो हम सोचेंगे, जो हम बोलेंगे, जो हम करेंगे, थॉट्स वर्ड्स एक्शन Energy which I create, send out, karma. Karma. What is karma? Boli aap. What is my karma? My thoughts, my words, my behavior. Because karma is energy which goes out from me. तो कर्मा सिर्फ शब्द और व्यवहार में नहीं हो सकता, सबसे deepest कर्मा यहां चल रहा है, हम क्या और कैसा सोचते हैं। अगर मैं आपसे बहुत प्यार से बात करूं लेकिन मैं आपके लिए गलत सोचूं, कौन सा कर्म बनेगा? कौन सा कर्म बनेगा? मैंने कहा बहुत अच्छे हैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं 5 लाइन बहुत प्यार से बात की और मैंने अपने आप को कहा मैंने उनसे बहुत अच्छे से बात की, लेकिन अंदर तो अगर मैं अपनी कार्मिक बैलेंस शीट को चेक करूं कि आज उनके साथ जो मेरी ट्रांजैक्शन रही वो प्रॉफिट साइड पे रही या लॉस साइड पे रही। हम कई बार कहते हैं मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, मैंने तो सबके साथ ही अच्छा किया, फिर मेरे भाग्य में ऐसा क्यों आया? क्योंकि जब हम अपनी सही और गलत की चेकिंग करते हैं, हम सिर्फ ये चेक करते हैं मैंने सबके साथ व्यवहार अच्छा किया। सो कर्म इज नॉट ओनली इन वर्ड्स एंड बिहेवियर, कर्म इज इन माई एवरी थॉट, फीलिंग, इंटेंशन, बिकॉज दैट इज एनर्जी विच आई क्रिएट एंड आई रेडिएट। तो कर्म इज जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, एनर्जी मुझसे निकली बाहर। सिचुएशंस जो मेरे सामने आती हैं, लोग मेरे से जो व्यवहार करते हैं, वो है एनर्जी जो बाहर से मेरी तरफ आती है। व्हाट इज दैट एनर्जी जो मेरे से बाहर जाती है? कर्म। एनर्जी जो बाहर से मेरी तरफ आती है, मैंने बहुत मेहनत की इस प्रोजेक्ट पे, कर्म, कर्म, बिकॉज दैट इज माई एनर्जी व्हिच आई एम सेंडिंग आउट, कर्म। सब कुछ करने के बाद भी वहां गड़बड़ हो गई। एनर्जी जो सिचुएशन में बाहर से मेरी तरफ आती है, दैट इज माई भाग्य, दैट इज माई डेस्टिनी। ये दो एनर्जी के डायरेक्शन हमेशा सेट रहने चाहिए माइंड में। एनर्जी जो मेरे से बाहर जाए कर्म, एनर्जी जो मेरे सामने आए वो मेरा भाग्य। अब इन दो एनर्जीज का कनेक्शन क्या? विच मीन्स एक बॉल जो मैंने फेंकी कर्म, एक बॉल जो मेरे पास आ रही है भाग्य। अब ये दो बॉल्स का कनेक्शन क्या? इन दोनों का कनेक्शन क्या? जो फेंकेंगे वो ही वापस आएगा। सिंपल लॉ है, लॉ ऑफ कर्म। जो बॉल फेंकेंगे वो ही बॉल वापस आएगी। दिस इज लॉ ऑफ कर्म। कितनी देर में वापस आएगी? अभी क्या हुआ, सडनली मेरे सामने जीवन में एक बात आ रही है बहुत बड़ी है। वो बॉल है जो मेरे पास वापस आ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने उस व्यक्ति के साथ कभी कुछ गलत किया ऐसा। मैंने हमेशा उनके लिए अच्छा सोचा, मैंने हमेशा उनके साथ कोऑपरेट किया, मैंने हमेशा उनको सम्मान दिया, फिर भी उनसे मेरे पास गलत व्यवहार आ रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बॉल मैं फेंक रही हूं वो तो बहुत अच्छी वाली है, लेकिन जो सामने से मेरे पास आ रही है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो ये लॉ ऑफ कर्म कैसे वर्क करेगा? विच मीन्स के जो बॉल मैं फेंक रही हूं वो इमिजिएटली वापिस आए ऐसा जरूरी नहीं। तो मैंने यहां से बॉल फेंकी, वो नेक्स्ट सेकेंड भी वापस आ सकती है। अब भी मैंने आपसे बुरी तरह से बात की, आपने ऑपोजिट में उतने से भी ज्यादा बुरी बात करी, इमीडिएटली कर्मा कॉन्सिक्वेंस बैक नेक्स्ट सेकेंड। 5 मिनट बाद भी आ सकती है, 50 साल बाद भी आ सकती है, और जिस दिन मैं ड्रेस चेंज कर लूं उसके बाद भी आ सकते हैं। क्योंकि कर्म किसके और किसके बीच था? मेरे और आपके बीच था। मैं और आप कौन? आई द एनर्जी क्रिएटेड दैट कर्म फॉर यू द एनर्जी एंड देन आई चेंज्ड माय कॉस्ट्यूम। इट्स लाइक आज मैंने बहन से अच्छे से बात नहीं की, इन्होंने आज ग्रीन ड्रेस पहनी है, कल ये घर गए इन्होंने ड्रेस बदली, मैंने भी बदली, कल हम फिर मिले इनकी पिंक कलर की ड्रेस है और इन्होंने आके मेरे से बुरी तरह से बात कर दी। मैंने कहा ऐसा क्यों किया? मैंने जब आपसे बुरी तरह से बात की थी तब तो आप ग्रीन ड्रेस में थे ना, तो उसी दिन पूरा करना चाहिए था ना जो आपको करना चाहिए था। हम ऐसा बोलते हैं कि ये क्या है कैरी फॉरवर्ड, तभी का तभी पूरा होना चाहिए सब कुछ, So it's like saying, whatever you want to do, do it while you're wearing the green dress. Tomorrow is a new day. Does it happen like that? No. ये तो सिर्फ एक dress है. ये तो सिर्फ एक dress है. आज मेरा आपके साथ जो interaction होगा, वो कल continued रहेगा. Similarly, ये शरीर भी एक dress है. हम कर्म करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं. अच्छे इतने सारे हम कर्म कर रहे हैं. आज हम इस शरीर में हैं जो बिल्कुल हेल्दी है. ये कितने श्रेष्ठ कर्मों का फल है, इतना अच्छा शरीर मिला है कि नहीं है फल. आज हमने 3 दिन निकाल के ये चूज किया कि हम अपने लिए आज यहां आ रहे हैं. कितनों को इन्विटेशन गया होगा, कितनों को गया होगा. आप आए, अपने लिए समय निकाला, ये श्रेष्ठ कर्मों का फल है. तो हमारे मेजॉरिटी कर्म तो बहुत ही ब्यूटीफुल है. इतना अच्छा परिवार, आज श्रेष्ठ कर्मों का फल है कि डॉक्टर बने हैं, सुख देने वाले प्रोफेशन में है, सुख देने वाले प्रोफेशन में है ना, दुआएं कमाने वाले प्रोफेशन में है. इस प्रोफेशन में आज हम हैं, ये कितने श्रेष्ठ कर्मों का फल है. हर साल कितने बच्चे कोशिश करते हैं डॉक्टर बनने के लिए, कितने कोशिश करते हैं और कितने बनते हैं, कितने श्रेष्ठ कर्मों का फल है. तो हमारे बहुत सारे श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन वो कर्म आज नहीं किया होता, पहले किया होता उसका वो कॉन्सिक्वेंस आता है. तो इसलिए जो बॉल हम फेंकेंगे वो उसी टाइम वापस नहीं आएंगे. कोई उसी टाइम आएगी, कोई थोड़े दिन बाद, कोई थोड़े साल बाद, और कोई जब वापस आ रही होगी तो तब मैं आत्मा कॉस्ट्यूम चेंज कर लेती हूं और फिर वो फिर से वापस आती है. डॉक्टर्स के मन में कई बार ये प्रश्न उठता है कि बच्चा पैदा होते ही क्यों इतना कॉम्प्लिकेशंस है, क्यों उसके पैदा होने में भी कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, क्यों वो पैदा ही बीमारी के साथ हुआ. हमें सब चीज का आंसर पता होना चाहिए ताकि हम उसको राइट थॉट के साथ हीलिंग कर सकते हैं. सोल ऑन अ जर्नी है, वो सोल अपने ऊपर कुछ ऐसा रिकॉर्ड करके लाई है जिससे वो नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में एंटर करते ही उसकी वो कर्मा की रिकॉर्डिंग उसके कॉस्ट्यूम को रेडिएट होती है और वो उस कॉस्ट्यूम में. कल आपने बताया कि जब आत्मा कंप्लीटली बैटरी चार्ज्ड होगी सत्युग में तो उसको शरीर कैसा मिलेगा, उसको शरीर कैसा मिलेगा. सिंपल देखते हैं, सिंपल. अगर आज कोई किसी बहन के साथ कुछ गलत करता है, उसके मन और शरीर को वो अब्यूज करता है, ये कर्म है. इस कर्म को आप क्या कैटेगरी में डालेंगे, इस कर्म को कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? तो क्या उस कर्म का कॉन्सिक्वेंस नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? मैंने कोई ऐसा कर्म किया जो किसी दूसरी आत्मा का जीवन भर के लिए ट्रॉमा क्रिएट कर दिया. इट्स अ लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा फॉर somebody एल्स एंड नॉट ट्रॉमा जस्ट फॉर वन सोल, ट्रॉमा फॉर एन एंटायर फैमिली. ये कर्म नहीं है, कर्म नहीं है. हमें लगता है लॉ ऑफ कंट्री जो काम करेगी बस हो जाएगा उससे, नहीं. लॉ ऑफ कंट्री में तो फिर भी कोई छूट जाएगा, लॉ ऑफ कर्म में नहीं कोई छूटेगा, नहीं छूट सकता. ये कोई ऊपर बैठ के नहीं लिख रहा है, ये अपने आप आत्मा का हिसाब किताब अपने सोल के साथ कंटिन्यूस चलता है, बैलेंस शीट. तो जब किसी ने किसी के शरीर को अब्यूज किया, किसी आत्मा को जीवन भर के लिए ट्रॉमा दिया, तो फिर शायद उसके साथ वो जो कर्म चलेगा वो किसी ना किसी तरह में तो सामने आएगा ही. अब हमें क्या करना होता है, उस आत्मा को अब हीलिंग देकर उसके पास्ट कर्म को भी हील करके आगे के जीवन को सुंदर बनाना होता है. तो इसलिए नथिंग इज अनफेयर, एवरीथिंग इज एब्सोल्यूटली एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कर्मा. दिस लॉ इज वर्किंग कॉन्स्टेंटली, लॉ ऑफ कर्मा. इसलिए सारा दिन में किसी से मत डरो, लेकिन एक चीज से सिर्फ डरो. डरो मतलब ध्यान रखो अपने कर्म, अपने कर्म. कोई कर्म मुझ आत्मा से ऐसा ना हो जाए कि जब वो कर्म का कॉन्सिक्वेंस मेरे सामने आए, आज आए या अगले कॉस्ट्यूम में आए, तो मुझे कहना पड़े मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कोई और बैठ कर नहीं डिसाइड कर रहा है। अब अगर सारा दिन ये ध्यान रहे तो थोड़ा सा जीवन जीने के तरीके में कुछ परिवर्तन आएगा, आएगा आएगा कि सारा दिन मेरी तरफ से जो एनर्जी सबको जा रही हो वो कैसी होनी चाहिए। अब क्या इसमें हम ये फोकस करेंगे कि सामने वाले की तरफ से मेरे पास कौन सी एनर्जी आ रही है। हमेशा याद रखना है, उनका कर्म उनका कर्म उनका भाग्य, मेरा कर्म मेरा भाग्य। किसी और का कर्म मेरा भाग्य नहीं खराब कर सकता। कई बार हमें लगता है वो हमारे काम में विघ्न डाल रहे हैं, वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो हमें पीछे खींच रहे हैं, वो अपना कर्म बना रहे हैं, लेकिन उनका कर्म हमारा भाग्य नहीं लिख सकता। हमारा भाग्य सिर्फ कौन लिखेगा? एक चीज यहां से पक्की करके जानी है, आसपास बहुत लोग होंगे साथ में जो अलग अलग तरह के कर्म कर रहे होंगे, एक सीधे रास्ते चलना है और सिर्फ एक ही चीज पर अटेंशन रखना है, मेरा संस्कार मेरा कर्म, मेरा संस्कार मेरा कर्म। चाहे हम एक दिन ऐसा हो कि हम अकेले पूरी दुनिया दूसरी तरफ, हम अकेले पूरी दुनिया दूसरी तरफ, घर वाले भी दूसरी तरफ, हो सकता है ना, वो भी तो आत्मा ऑन अ जर्नी है। जरूरी नहीं है कि उसके कर्म मेरे कर्मों के साथ मैच करें, लेकिन अपने कर्मों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, नहीं करना है। अपने कर्मों को थोड़ा सा भी डाइल्यूट नहीं करना है। थोड़ा तो चलता है, नहीं चलता है, इतना तो नॉर्मल है, नहीं है। क्योंकि जब उसको थोड़ा तो चलता है कर्मों में लिखेंगे, फिर भाग्य में भी थोड़ा तो आएगा ही। अब ये डिसाइड कर लें कितना थोड़ा चाहिए भाग्य में, उतना थोड़ा डाइल्यूट करें। सो मेडिटेशन गिव्स अस द पावर टू स्टैंड अलोन ऑन आर कर्मा। वी विल नॉट सकम टू पीयर प्रेशर, वी विल नॉट सकम टू अप्रिशिएटिंग एंड अप्रूविंग ऑफ पीपल एंड जस्ट डूइंग वॉट दे वॉन्ट। वी विल नॉट सकम टू वॉन्टिंग देयर अप्रिसिएशन एंड कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन आर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। नो, इट्स द जर्नी ऑफ द सोल। आज किसी को खुश करने के लिए मैंने कुछ कॉम्प्रोमाइज कर दिया, वो तो आगे चले गए, मेरा तो भाग्य बिगड़ गया ना। इज इट वर्थ इट? वर्थ इट? यस। तो सामने वाला क्या कर रहा है, उसके साथ एंटेंगल होकर अपना कर्म नहीं बिगाड़ना है कभी भी। उसने ऐसा किया तो मैं भी करूंगा, नहीं। दूसरा बिजनेसमैन लॉस कर रहा हो तो हम भी करेंगे क्या? उल्टा, जब दूसरा लॉस कर रहा हो वही टाइम होता है ज्यादा प्रॉफिट कमाने का, वो टाइम होता है ज्यादा प्रॉफिट कमाने का। कोई आपके साथ गलत करे और तब आप सही करें, कितने श्रेष्ठ कर्म बनते हैं। ये होता है दुआएं देना और दुआएं लेना। सामने वाला कुछ भी कर रहा हो, मुझे सिर्फ अपना कर्म। अब कई बार सब कुछ सही करते हुए भी सामने से कुछ और बातें आ जाती है। आता है ऐसा कभी कभी? आता है? आता है? मन कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों? तो सबसे पहले तो उस क्वेश्चन को आंसर करके फिनिश करना है, क्योंकि क्वेश्चंस जब माइंड क्रिएट करता है तो सोल पावर घटती है। उस पावर को हमें सोल्यूशन के लिए यूज करना है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? दिस इज वेस्ट ऑफ एनर्जी, दिस इज वेस्ट ऑफ एनर्जी। द फोकस हैज टू बी नाउ व्हाट। तो ऐसा क्यों हुआ उसका आंसर देके उस चैप्टर को क्लोज करते हैं। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? ये मेरे ही कोई ना कोई कर्म का हिसाब किताब सामने आया है, फुल स्टॉप। no more question. And let's use all the energy now के present karma को अच्छा कर ले. Past का karma, ये भी equation set करनी है. जो मैंने अभी ball फेंकी, वो वापस आएगी. Suppose वो एक साल के बाद वापस आ रही है. अब मैं आराम से बैठी हूँ, सामने से एक ball आ रही है वापस, which means एक situation आ रही है सामने से. This is a return journey of that, right? This is my destiny. जब वो बॉल सामने से आ रही है, मेरे पास प्रेजेंट में क्या पावर है? This is my return of my past. बॉल सामने से आ रही है, प्रेजेंट में क्या पावर है? आज मेरे साथ कोई गलत कर रहा है, बार बार गलत कर रहा है, बार बार मेरे काम में विघ्न डाल रहा है. मैं सही करने की कोशिश कर रही हूँ, बार बार मुझे तंग कर रहा है. ये बॉल सामने से आ रही है. सबसे पहले ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? आंसर, ये आंसर क्योंकि ये बॉल मैं पहले फेंक कर आई हूं. सामने से एनर्जी आ नहीं सकती अगर हमने कभी भेजी नहीं थी. ये हो सकता है कि हम भेजकर भूल गए हैं. क्यों भूल गए हैं? क्योंकि वो शायद मैंने इस कॉस्ट्यूम में नहीं भेजी थी. फोन्स अगर अपने साइलेंट रखें तो इसलिए अच्छा होता है क्योंकि हमारा फोन बजने से अगर दूसरे का मन डिस्टर्ब होता है, वो भी अच्छा कर्मा नहीं होता. कर्मा फिलोसफी में एक ही ध्यान रखना है, मेरा कोई कर्म ऐसा न हो जिससे दूसरे का मन अशांत हो, क्योंकि उसकी अशांति के वाइब्रेशन मेरे पास ही आएंगे. कोई कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे दूसरे का मन डिस्टर्ब होता है. तो मैंने कोई ऐसा कर्म किया, उसके बाद मैंने कॉस्ट्यूम चेंज किया, वो बॉल मेरे सामने आ रहा है. माय पास्ट इज कमिंग बैक टू माय डेस्टिनी इज कमिंग टू मी नाउ व्हाट टू डू. पास्ट बहुत भारी है, हेवी है वो कार्मिक अकाउंट. नाउ व्हाट टू डू. जब एक बॉल सामने से आ रही है ना, उस बॉल पर अटेंशन नहीं दो, क्योंकि उस बॉल के ऊपर अब हमारी कोई पावर नहीं है. वो तो आनी ही है ऐसा. वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. विजुअलाइज दैट बॉल कमिंग. कैन यू डू एनीथिंग टू दिस बॉल कमिंग लाइक दिस? नो. सो वी हैव नो पावर ऑन द रिटर्न ऑफ माय पास्ट, बट वी हैव कंप्लीट पावर ऑन माय प्रेजेंट कर्मा. हमारा सारा फोकस अपने प्रेजेंट कर्मा पर होना चाहिए. हम उलझ जाते हैं वो पास्ट कर्मा से. ये बहन अभी खड़े हो मेरे से गलत तरह से बात करे, ये बॉल वापस आ रही है. मैं क्या कर सकती हूं अभी? अगर ये मेरे को खड़े होकर सबके सामने मेरी इंसल्ट करते, अभी बॉल वापस आ रही है, व्हाट कैन आई डू? ऑप्शंस, व्हाट कैन आई डू? This energy is coming there from me. She is saying something to me which is not liking by me. What can I do right now? Option one. अगर मैंने question करना शुरू किया, ऐसा क्यों कर रही है, 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 तो मेरे present karma में कौन सी quality की ball गई? अगर मैंने उसका मैंने भी बुरी तरह से जवाब दिया, तो मेरे प्रेजेंट कर्मा में कौन सी क्वालिटी की बॉल गई? अगर मैंने उसके बारे में जाके चार लोगों से बात की और गलत फैलाया, मेरे प्रेजेंट कर्मा में कौन सी बॉल गई? तो पास्ट वाली जो आ रही थी वो तो अच्छी थी नहीं, लेकिन प्रेजेंट में भी गलत वाली फेंक दी, तो प्रेजेंट पे गया. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे का भाग्य लिख दिया, अब ये वाली वापस आएगी. इसीलिए त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी मतलब हर क्षण तीनों काल याद रहने चाहिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. एट एवरी मोमेंट पास्ट इज कमिंग बैक टू मी, प्रेजेंट इज गेटिंग क्रिएटेड, फ्यूचर इज गेटिंग डिसाइडेड एवरी मोमेंट विद एवरी कर्मा. पास्ट कैन बी वेरी हैवी, बट जितना भी पावरफुल पास्ट हो, प्रेजेंट उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है. कोई बीमारी लेकर आया है, पास्ट का है. प्रेजेंट में ठीक करेगा, ध्यान रखेगा, फाइन ओवर। कोई रिश्ता बिगड़ा हुआ है, पास्ट है, प्रेजेंट में थॉट्स चेंज करेंगे, रिश्ता ठीक हो जाएगा। तो पास्ट को नहीं रोना है, प्रेजेंट पर फोकस करना है। और जैसे ही प्रेजेंट पर फोकस करेंगे, फ्यूचर सेफ है, किसी को जाकर पूछने की जरूरत नहीं है मेरे भविष्य में क्या लिखा है। मेरा भविष्य हम रोज बना रहे हैं उसको। किसी को जाकर पूछते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 7 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, क्यों पूछना है जाकर के आगे क्या होने वाला है। अपना भाग्य तो हम खुद लिखते हैं। किसान बीज बोता है, हर रोज उसको नर्चर करता है, किसी और को जाके नहीं पूछता कैसा वृक्ष और फल निकलेगा, क्योंकि उस फल और वृक्ष की जिम्मेवारी उस किसान की खुद है। तो बीज वो कर्म है और उसका फल निकलना है, अटेंशन सिर्फ अपने पर। तो कुछ कर्मों के हिसाब किताब वापस आएंगे जो अभी के नहीं होंगे। आ गया, सामने आके खड़ा हो गया सडनली। अब सिर्फ अटेंशन, मेरी हर थॉट, मेरा हर वर्ड, मेरा हर एक्शन कैसा होना चाहिए, एट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन। दैट इज व्हाई एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मीन्स सामने से जो आ रहा है उसमें उलझना नहीं, सिर्फ अपने कर्म पर फोकस। तो जब ये याद रहे तो हर कर्म पर कितना अटेंशन। अब सामने वाला अगर अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, हम कैसा करेंगे? सामने वाला अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, हम कैसा करेंगे? वो बहुत बुरा कर रहा है, हम कैसा करेंगे? बहुत अच्छा। वो बहुत बहुत बुरा कर रहा है तो हम क्या करेंगे? कितना सिंपल जीवन जीने का तरीका है, इतना सिंपल है। क्योंकि मेरा कर्म मेरा भाग्य लिख रहा है। ऐसे संस्कार और कर्म रिकॉर्ड होते जाए आत्मा पर, जिस क्षण आत्मा शरीर छोड़े, 9 महीने बाद दूसरी जगह बच्चा पैदा हो, पंडित जी कहे बच्चा क्या भाग्य लेकर आया है। वो भाग्य कैसे लेकर आया? वो भाग्य कैसे लेकर आया? हर एक की कुंडली अलग क्यों है? हर एक की जन्म पत्री अलग क्यों है? किसने बनाई? तो हमें लगता है वो उस दिन उस प्लैनेट के टाइम पैदा हुआ, इसलिए उस दिन उस प्लैनेट के टाइम बहुत सारे बच्चे पैदा हुए थे इस विश्व में। लेकिन हर एक की जन्म पत्री अलग है। क्यों अलग है? वो आत्मा कौन से संस्कार और कर्म लेकर आई? बाहर की अचीवमेंट्स, बाहर के प्रॉफिट्स, उस पर जितना अटेंशन और मेहनत रखते हैं, उससे कई कई गुना ज्यादा अटेंशन और मेहनत आंतरिक प्रॉफिट पर रखें। क्योंकि आंतरिक में अगर लॉस हो जाता है ना, तो बाहर के सारे प्रॉफिट्स भी इंजॉय नहीं किए जाते जीवन में, नहीं कर सकते। तो कर्म, सबसे पहला कर्म जो हमारा होता है, जो एनर्जी हमारे घर आती है, वो होती है धन की एनर्जी। 4 फैक्टर्स हैं जिनका कनेक्शन होता है एक दूसरे के साथ। पहले आता है धन, उस धन से खरीदा जाता है अन्न घर का, राइट है? धन से अन्न खरीदेंगे, उस अन्न का असर होता है मन पर, और उस मन का असर होता है तन पर। माइंड क्रिएट्स द बॉडी, फूड इन्फ्लुएंसेस द माइंड, एंड मनी बाइज द फूड। 4 एनर्जीज, धन, बताइए, धन, अन, मन, तन। अगर धन क्लीन नहीं, आगे की 3 क्लीन नहीं हो पाएंगे। ये जो कलयुग में इतना अति में दुख और दर्द हो रहा है, उसका रीजन सिर्फ धन क्लीन नहीं है। इसलिए धन, इट्स अ प्रोसेस प्लांट, वील हैव टू गो स्टेप वाई स्टेप। धन गलत हो गया, अन्न बहुत हेल्दी बना दिया जी, हेल्दी डाइट न्यूट्रिशन, कितना भी हेल्दी डाइट बना लो, वो हर चीज खरीदी गई है गलत धन से। तो अन्न जो धन घर में आए, वो धन दुआओं के साथ आना चाहिए। धन को लक्ष्मी कहा जाता है, क्यों? क्यों धन को लक्ष्मी कहा जाता है? क्योंकि धन सिर्फ करेंसी नहीं है, धन एनर्जी है जो घर आती है। आप किसी के साथ एक ट्रांजैक्शन करते हैं, आप उसको एक चीज देते हैं, आप उससे धन लेते हैं, लेकिन उस धन के साथ उसकी वाइब्रेशन हमारे घर आती है। तो धन जो घर आ रहा है वो धन नहीं आना चाहिए, धन दुआओं के साथ आना चाहिए, तब उस घर में हमेशा सुख शांति सेहत बरकत रहेगी। आप किसी से फ्रूट लेने गए, उसने आपको नीचे दो सड़े हुए एप्पल ऊपर तीन अच्छे एप्पल देकर लिफाफा पकड़ा दिया, आप घर आके कोई थॉट्स क्रिएट करते हैं उसके लिए? करते हैं उसके लिए कोई थॉट्स क्रिएट? क्या फर्क पड़ता है आपको? 100 रुपए के तो 2 एप्पल थे, इतना क्या सोचना है उसके लिए? लेकिन फिर भी क्रिएट करते हैं। क्यों क्रिएट करते हैं? इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट, इट्स अबाउट द कर्म। ही चीटेड मी। जैसे हम घर आए और हमने ये सारी थॉट्स क्रिएट की, तो वो सारी एनर्जी किसके पास जाएगी? वो सारी एनर्जी किसके पास जाएगी? तो उस फल वाले ने उस दिन 100 रुपए एक्स्ट्रा कमाए, लेकिन उस 100 रुपए एक्स्ट्रा के साथ उसने क्या कमाया? वो नेगेटिव एनर्जी कमाई। उसके घर वो 100 रुपए और वो एनर्जी दोनों जाएंगे। और ये किसी ने आपको कहा कि नहीं साहब आज फ्रेश नहीं है, मेरे से मत लो, उस दिन उसने 100 रुपए नहीं कमाए, लॉस हो गया उसका, लेकिन उस दिन आपने बैठकर उसको कौन सी थॉट्स भेजी? अरे कमाल का व्यक्ति है, अपना नुकसान कर दिया, मेरा फायदा कर दिया। दुआएं ही बाजेंगे, दुआएं भेजेंगे, 5 लोगों को बताएंगे, पता है कैसा वाला था, अपना नुकसान कर दिया। कितनी दुआएं कमाएगा उस दिन वो फ्रूट वाला? और उसके बाद अगले दिन से किसके पास जाएंगे? उसी के पास जाएंगे। और अगले दिन से उसको कभी जाके रेट भी नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। तो उस दिन उसने क्या क्या कमाया? उस दिन उसने धन गवाया, ही लॉस्ट मनी दैट डे। लेकिन उस दिन उसने क्या क्या कमाया? दुआएं कमाई, और क्या कमाया? और क्या कमाया? विश्वास कमाया, क्रेडिबिलिटी कमाई फॉर अ लाइफ टाइम। दिस इज कॉल्ड अ लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान, नॉट अ शॉर्ट टर्म बिजनेस ऑफ अर्निंग 100 रुपीज। ध्यान से कर्म करने हैं। हम एक ऐसे प्रोफेशन में हैं, बहुत कम प्रोफेशन समाज में हैं, जिसमें प्रोफेशन में ही दुआएं कमाई जा सकती हैं। बहुत कम प्रोफेशन है, दुआएं उस प्रोफेशन में कमाई जाती हैं जहां दुखी को सुख दिया जाता है, तब दुआएं मिलती हैं। अब मैं दुकान में गई, ये स्टील का ग्लास खरीदा, मैं दुकानदार को दुआएं देना याद नहीं रहता मुझे, बिजनेस कर रहे हैं ना, बिजनेस है सिंपल, पैसे दिए, ग्लास खरीदा, खत्म। लेकिन अगर ये ग्लास आकर बाद में तंग करने लगा, तब उसको बहुत कुछ मिलेगा मेरे से। हर रोज ग्लास देखकर 100 रुपए ले लिए थे, टेढ़ा हो गया पहले से, ऐसी चीज दी। दिस इज द एनर्जी विच द अदर पर्सन कीप्स अर्निंग फ्रॉम मी फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो हम एक ही मात्र ऐसा प्रोफेशन है जिनको अलग से समाज में सेवा करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब प्रोफेशन अलग करते हैं, दान पुण्य सेवा अलग करते हैं। एक ही प्रोफेशन जिसके प्रोफेशन में ही, सारा दिन के काम में ही दुआएं हैं, ऐसा भाग्य है ऐसा प्रोफेशन में होने के लिए। लेकिन उसमें अगर ध्यान नहीं रखा तो फिर ये एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है। ध्यान रखा तो दुआएं दुआएं हैं, लेकिन ध्यान नहीं रखा तो ऑपोजिट एनर्जी भी उतनी मल्टीफोल्ड है। क्यों? क्योंकि सामने वाला जो आ रहा है वो दर्द में आ रहा है, वो दुख में आ रहा है। अभी अभी हमने पढ़ा, जब फ्लड्स हुए, कुछ लोगों ने उस मौके को भी यूज करके अपना पैसा बनाने का सोचा, पढ़ा ना, किसी ने कोई चीज के रेट बढ़ा दिए, किसी ने कुछ कर दिया। तो जब हम ऐसी चीज सुनते हैं तो हमारे मन से क्या निकलता है? ये भी कोई समय होता है किसी को एक्सप्लॉइट करने का? बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं, नहीं बोलते? गुड। तो जब कोई बीमार आता है हमारे पास, उसके लिए उस दिन ट्रेजेडी से कम नहीं है कोई, वो उसकी लाइफ की वो ट्रेजेडी है उस दिन। ये भी कोई समय है कुछ और सोचने का? है वो समय कुछ और सोचने का? है, दुख में आया, दर्द में आया और पूर्ण रीति से समर्पण किया, अपने बच्चे को आपके टेबल पर रख दिया और कहा डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचाओ, हैंड ओवर कर दिया अपना बच्चा आपको। किसी को देता है कोई अपना बच्चा? संपूर्ण विश्वास और दर्द में आया हुआ जब कोई हमारे पास है, अगर उसके साथ थोड़ा सा भी कुछ गलत हुआ, ये ऐसा कर्मा होता है जिसका बहुत कई गुणा कॉन्सिक्वेंस आता है। नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में को हो उसको चीट करो इज अ डिफरेंट कर्मा, दर्द और दुख में कोई आए और संपूर्ण ट्रस्ट करे और उसको चीट करो इज अ कंप्लीटली डिफरेंट कर्मा। इसीलिए इट्स अ वेरी हाई रिस्क प्रोफेशन एज फार एज कार्मिक अकाउंट इज कंसर्न्ड, वेरी हाई रिस्क प्रोफेशन। कई बिजनेस होते हैं छोटे बिजनेस होते हैं, प्रॉफिट भी थोड़ा लॉस भी थोड़ा, और कोई होते हैं प्रॉफिट भी ज्यादा लॉस भी ज्यादा। कर्मों के हिसाब किताब में, दुआओं के खाते में, ये प्रोफेशन में प्रॉफिट भी होगा तो इतना प्रॉफिट होगा कि वो आत्मा उसका परिवार जीवन भर दुआएं 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 देती रहेगी, ऐसी किसी और को नहीं मिलती। लेकिन थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो वो जीवन भर। तो इसलिए कर्मों पर अटेंशन, अटेंशन। ये पिछले कुछ सालों में हमारे सामने जो बातें आई हैं और उसका भी ब्लेम हम उन पर डाल रहे हैं कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेट्स रिमेम्बर बॉल सामने से आ रही है, वो बॉल अब सामने से आ रही है। क्वेश्चन, ये बॉल मेरे सामने से क्यों आ रही है, क्यों आ रही है, क्यों आ रही है? पेशेंट्स के अंदर डर क्रिएट किया, आज डॉक्टर्स को डर में जीना पड़ रहा है। पेशेंट्स के मन को अगर निश्चिंत रखेंगे, डॉक्टर से ज्यादा निश्चिंत कोई नहीं रह सकता है। डॉक्टर इन फियर, व्हाई इन फियर? पेशेंट्स के अंदर फियर इंस्टिल किया था, फियर का रिटर्न फियर ही आएगा, फियर का रिटर्न फियर आएगा। पैनिक क्रिएट कर दिया, अभी अभी करो, नहीं करोगे तो ऐसा, फियर इंस्टिल किया किसी के अंदर। इवन इन अ क्राइसिस सामने वाले को निश्चिंत करके मन को शांत करना, ये हमारा कर्म होना चाहिए, ये हमारा कर्म होना चाहिए, डर नहीं। तो अब बॉल सामने से आ रही है, अभी अगर बैठ के क्वेश्चन करेंगे कि ये बॉल सामने से क्यों आ रही है तो बॉल्स की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। और अगर उनको ही ब्लेम करेंगे कि कैसे पेशेंट है, हमने अपनी जीवन इनके लिए सैक्रिफाइस की, हमने अपने बच्चे का बर्थडे मिस किया, हम हॉलिडे पे नहीं गए सिर्फ इनके लिए और आज ये हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, इससे अच्छा तो हम इंडिया छोड़ के बाहर ही क्यों ना प्रैक्टिस करें जाके। ये बोलने से जो प्रेजेंट वाले कर्मा की भी बॉल जा रही है ना, नहीं, नो ब्लेमिंग, लेट्स टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फ्रटर्निटी, नॉट एज एन इंडिविजुअल, एज अ फ्रटर्निटी। It's our responsibility that the energy which we are receiving, we have to change it. And the easiest way to change it is, easiest way to change it is to change the energy which we are giving. अपनी तरफ से जाने वाला ball change कर दें, सामने वाले से आने वाला ball तो change होना ही है। कुछ तो हुआ होगा कि जो पैर छूते थे वो आज हाथ उठाने लग गए, ऐसे ही तो नहीं कर लिया, पैरों में तो गिर जाते थे आके डॉक्टर के, गिरते थे ना, भगवान का तो दर्जा दिया था, तो जो पैरों में गिरते थे वो हाथ उठाने लग गए तो कुछ तो कर्म आया होगा सामने। अब उसको ठीक करते हैं, ठीक करते हैं। डिग्निटी, व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड आई यूज्ड टू बी टोल्ड बिकम अ डॉक्टर, आई सेड व्हाई, सी इट्स अ वेरी डिग्निफाइड प्रोफेशन, दिस इज व्हाट आई वाज टोल्ड, इट्स अ वेरी डिग्निफाइड प्रोफेशन, बड़ी डिग्निटी है इस प्रोफेशन के अंदर, समाज से बड़ा सम्मान मिलता है इस प्रोफेशन को, वो डिग्निटी को हम क्या कर रहे हैं आज, हम क्या कर रहे हैं, उसी प्रोफेशन की डिग्निटी को लेकर आते हैं वापस। समाज में कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं, वो भी एक प्रोफेशन है, इट्स नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, इट्स जस्ट डिफरेंट प्रोफेशंस। कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं कि लोग बोलते हैं आपका ये काम है ना, मैं करवा देता हूं, आप मुझे बीच में 20% दे देना, वो भी एक प्रोफेशन है, बट इट्स अ डिफरेंट प्रोफेशन। मैं आपका ये काम करा दूंगा, मैं आपको इससे मिलवा दूंगा, आपका जो प्रॉफिट होगा उसमें से 20% मेरा, वो किसी और का प्रोफेशन था, हमारा नहीं था वो, हमारा नहीं था वो प्रोफेशन। कब और क्या हमने ऐसा किया जो हम उसको अपने प्रोफेशन में ले आए, और ऐसा ले आए कि उसको आज नॉर्मल बोल देते हैं कि ये तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। एक कोई आपके पास बीमार आता है, दुखी आता है, और आप उसको बोलते हैं आप ना उस डॉक्टर के पास चले जाओ, उस बात का कमीशन लेंगे हम? एक ह्यूमैनिटी से किसी को किसी के पास भेजा, उसका हम कमीशन लेंगे उससे? इससे ज्यादा हम अपने प्रोफेशन को हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा, कोई और नहीं कर रहा। लैब में भेज रहे हैं उसका भी कमीशन, स्कैन के लिए भेज रहे हैं उसका भी कमीशन। दुआओं से जीना है या कमीशन से जीना है, किससे चलना है? What do I want to live by? Blessings or with commission I earn? That is a completely different profession. लेकिन इतना नॉर्मल कर दिया कि आज चेंज करने के लिए भी डरते हैं कि ये तो नॉर्मल है, ऐसे ही समाज चलता है, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर और लोग भी हमसे नाराज हो जाएंगे। जब हम कुछ गलत करना शुरू करते हैं ना, कॉन्शियंस पहले एक दो बारी बाइट करती है सिर्फ कि ये गलत है गलत है, थोड़े दिन के बाद तो वो गलत भी सही लगना शुरू हो जाता है। कोई एक लिफाफा पहली बार लेता है ना तभी हाथ हिलते हैं, दूसरी बार लेता तभी हिलते हैं, तीसरी बार हाथ नहीं हिलता किसी का लिफाफा लेने से पहले, प्यार से बोलते हैं जी रख दो ये तो अपनी इनकम है। यही हो गया, यही हुआ। थोड़े दिन पहले आई मेट अ डॉक्टर, वेरी स्वीटली शी सेज टू मी, बहन आप इतने सेशन कराते हो, जरा लोगों को समझाओ कि डॉक्टरों से कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो मैंने कहा आप भी तो देखो ना, थोड़ा चीजें चेंज लाओ, ये क्या ये कमीशन? शी स्टेड एट मी लाइक दिस, शी सेड व्हाट डू यू मीन? आई सेड व्हाट डू आई मीन व्हाट? आई सेड वी ऑल्सो नीड टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। शी सेड नहीं, दैट्स नॉर्मल। आई सेड देन दिस रिटर्न इज ऑल्सो गोइंग टू बी नॉर्मल, then this is also normal. You are exploiting somebody in pain, then you cannot get respect in return. पूजनीय आत्मा को ही सम्मान मिलने वाला है, कमीशन लेके सिर्फ दर्द को ठीक करने वालों को सम्मान नहीं मिलेगा, सिर्फ धन मिलेगा। तो purpose of life चूज करना है कि सिर्फ धन कमाना है कि दुआएं भी कमानी है। दूसरों के घर बिक जाएं इलाज करवाते हुए और हमारे घर बड़े से बड़े होते जाएं, कैसे खुशी मिलेगी उस घर में रहकर जो किसी और ने अपना घर बेच दिया होगा उसे इलाज करवाने के लिए? खुशी कैसे आएगी उस घर के अंदर? घर का साइज बड़ा हो सकता है, सिर्फ खुशी नहीं आ सकती है, क्योंकि किसी और ने अपना मकान बेच दिया वो इलाज कराने के लिए। लेट्स चेंज व्हाई आर वी इन दिस प्रोफेशन, डिग्निटी। करें चेंज, करें चेंज, करें चेंज। बहुत बड़ा अमाउंट डिडक्ट होने वाला है, बहुत बड़ा होगा। मैंने जब अब फिगर्स पता किए, इट इज ह्यूज, इट इज ह्यूज। ऑन एवरी टेस्ट, ऑन एवरी ब्लड टेस्ट, ऑन एवरी स्कैन, ऑन एवरी रिकमेंडेशन टू एवरी डॉक्टर, अमाउंट इज ह्यूज, अमाउंट इज ह्यूज। लेकिन आंतरिक लॉस भी उतना ही बड़ा हो रहा है, एनर्जी डिप्लीट हो रही है, आत्मा की शक्ति घट रही है, धन बढ़ रहा है, घर में सामान आ रहे हैं, खुशी घट रही है। एक चीज हमेशा याद रखनी होती है, जब हम किसी से एहसान देते हैं ना, वो कैसे हम करते हैं? वो फार्मा कंपनी वाले आते हैं, हम उनसे वो गिफ्ट लेते कैसे हैं? इतने रॉयल डिग्निफाइड लोग दुआएं दे रहे हैं, हम एक आईपैड, एक आईफोन, एक स्पॉन्सरशिप, एक अमेरिका की टिकट, देने वाली आत्मा है, हम देने वाली है। एनर्जी एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है, या तो देने वाली डायरेक्शन में या इट डजेंट मीन वी डू चैरिटी, इट मीन्स वी डू क्लीन एथिकल मेडिकल प्रैक्टिस कर्म। हाउ कैन वी इवन हैव अ वर्ड इन मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस एथिक्स इन मेडिकल प्रैक्टिस, ये शब्द भी नहीं होना चाहिए बिकॉज दैट वर्ड इट सेल्फ मीन्स अनएथिकल थिंग्स आर हैपनिंग। शब्द कैसे आया कॉन्फ्रेंस में? बिजनेस में आया करता था एथिक्स इन बिजनेस, एथिक्स इन मेडिकल प्रैक्टिस, हाउ कैन दिस वर्ड बी देयर? ये शब्द खत्म होने की जरूरत है कि एथिक्स की तो कोई बात ही नहीं है, है ही नहीं। इतना धन कमाएंगे ना, अगर दुआएं कमाएंगे, इतना धन कमाएंगे, लेकिन दुआएं पहले कमानी है। उस फल वाले ने जो उस दिन अपना नुकसान किया, उसने अपना नुकसान किया, जीवन भर हम उसके पास जाएंगे ना फल लेने के लिए, तो वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा धन कमाएगा। एक लॉ है, उसको एक्सपेरिमेंट करके देख लें। जो धन कमाते हैं वो जरूरी नहीं है कि दुआएं कमाते हैं, वो धन कमाते हैं, बहुत सारा कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा धन कमाएंगे, ये 100% सर्टन है। एनीवन कैन डू दिस, एनीवन। यू विल अर्न मोर देन यू एवर थॉट यू कैन अर्न बिकॉज यू आर अर्निंग ब्लेसिंग्स। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, उस घर में सिर्फ सामान नहीं आएगा, सुख भी आएगा, क्योंकि कोई और घर बैठकर आपके लिए इतनी दुआएं कर रहा है। जीवन में विघ्न आते हैं ना, लोग कहते हैं दुआ करो विघ्न खट जाए, दुआ उस टाइम नहीं की जाती, दुआ अपने जीवन में कर्मों से कमाई जाती है। तो दुआएं कमाए, कैलकुलेट कर लें अमाउंट यहां से जाने से पहले, कैलकुलेट कर लें, बड़ा वाला आएगा, क्योंकि 30-30, 40-40 इतने बड़े बड़े अमाउंट हैं, तो काफी बड़ा आएगा, वो काफी बड़ा अमाउंट हो जाएगा, ऑलमोस्ट आधे आधे का तो फर्क हो जाएगा। लेकिन उसके बाद डिसीजन ले लें, जीवन कैसी जीनी है, ऐसी वाली जीनी है सारा दिन परसेंटेज लाने वाली जीनी है तो डिग्निटी और रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, फिर डर में ही रहना पड़ेगा। धन आया, डर भी आया, क्योंकि दूसरे को डरा के वो धन कमाया, तो उस धन के साथ घर में डर भी आया। सर्जरी करने से पहले भी डर लग रहा है आज, क्यों डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है हर टाइम के सामने वाला मेरे ऊपर केस ना कर दे, क्यों डर लग रहा है? क्योंकि डरा के धन कमाया था। आज चेंज कर दे, आज साल के अंदर पूरे देश की एनर्जी बदल जाएगी हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए। इट डज नॉट टेक टाइम फॉर पीपल टू चेंज, दे आर रेडी, दे वॉन्ट टू लव यू, दे वॉन्ट टू रिस्पेक्ट यू, दे वॉन्ट यू टू गिव यू दैट सेम पोजिशन विच दे हैव गिवन, बट वी विल हैव टू ब्रिंग आवर सेल्फ टू दैट पोजिशन। वी कैन नॉट डिमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम पीपल, सम्मान कभी मांगा नहीं जा सकता, सम्मान भी कमाना पड़ता है, दुआएं कमानी पड़ती हैं। शुरू करें जाने के बाद, शुरू करें कि वो 30%, वो 40% जो मुझे मिल रहा था उस लैब से, मुझे मिल रहा था उस डायग्नोस्टिक सेंटर से, वो मेरे हर पेशेंट को वो डिस्काउंट मिलना चाहिए, हर पेशेंट को मेरे वो 30-40% डिस्काउंट मिलना चाहिए। ये श्रेष्ठ कर्म करें यहां से वापस जाने के बाद, और किसी को दूसरे डॉक्टर के पास भेजने के तो पैसे ना लें कम से कम, ऐसा कौन करता है? आप कभी कोई अच्छी पिक्चर देखते हैं, आप औरों को भी बताते हैं ये पिक्चर देख लो अच्छी थी, कौन कौन करता है आप में से ऐसा? आप किसी दुकान पर जाते हैं, आपको कुछ अच्छा मिलता है, आप औरों को भी बताते हैं अच्छा था, उसके पास चले जाओ, कमीशन लेते हैं क्या उस बात की? कमीशन लेते हैं, ह्यूमन नेचर है, कुछ अच्छा लगा इमीडिएटली दूसरे के साथ शेयर करो, किसी से लेना नहीं, एहसानों तले झुकना नहीं, जो एहसान तले झुकते हैं उनको कभी ना कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, एहसान नहीं लेना कभी। फार्मा कंपनी वाला आएगा लिफाफा देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, प्यार से वापस करो, वो बोलेगा नहीं नहीं ये तो नॉर्मल है, हम सबको देते हैं। बोले सबको तो भले, हमने तो उनसे भी बात की थी, आप लोग क्यों देते हो? आप देते हो इसलिए सिस्टम खराब हो रहा है। कहते हमारे पास कौन से ज्यादा पैसे हैं इनको देने के लिए, ये हमारी दवाई रेफर ही नहीं करते हमारे दिए बिना, तब हमें देना पड़ता है। एवरीबडी इज पुटिंग ब्लेम ऑन ईच अदर। सो हु इज गोइंग टू टेक दैट डिसीजन टू स्टॉप? ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, आपका रेट कितना भी हाई हो उसको हाई रखें। चैरिटी नहीं करनी है, लेकिन फिर सिर्फ उसी रेट का कमाएं। यू चार्ज 2000, चार्ज 5000। दोज हु कैन अफोर्ड दैट 5000 ओनली, दे विल कम, विच इज फाइन। कलयुग में बीमारियां कम नहीं होने वाली हैं, भीड़ बहुत लगने वाली है। अपना ही नुकसान कर रहे हैं दुआओं के ऑपोजिट कमा के। कलयुग में एक ही प्रोफेशन है जो सेफ है, एक डॉक्टर, एक जुडिशरी। बढ़ता ही जाएगी लाइन सामने, नहीं घटने वाली वो कलयुग के अंदर। योर प्रोफेशन इज एब्सोल्यूटली सिक्योर। तो क्यों अपना नुकसान करते आत्मा का गलत कर्म करके? क्यों करना? धन दुआओं के साथ आएगा हमारे घर, उससे हम अपने बच्चों को अन्न खिलाते हैं। किसी का दर्द लगाया हुआ अन्न खिलाएंगे अपने बच्चे को, क्या सुकून मिलेगा उस बच्चे के मन को? कैसे मिलेगा? सो वी नीड टू चेंज एंड वी आर हियर टूगेदर सो दैट वी कैन क्रिएट अ चेंज ऑन अ कलेक्टिव लेवल। डरना नहीं वापस जाके, ये नहीं सोचना बाकी सब क्या बोलेंगे। कलयुग में सत्युग कर्म करेंगे तो थोड़ा सा इधर उधर से एनर्जी आ सकती है, क्योंकि गलत लोग कर्म जो कर रहे होते हैं उनको डर लगता है। अगर आज आप अपना 30% डिस्काउंट के रूप में पेशेंट को दे दें, बाकी सारे डॉक्टर तो डर जाने आपके आसपास, कहेंगे फिर तो सारे पेशेंट इनके पास ही जाएंगे। बोलो बहुत अच्छी बात है, या तो आप पेशेंट खो दो या आप भी अपना 30% छोड़ दो, चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है। हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करेंगे आपकी वजह से? हम गलत कर्म करेंगे, क्यों करेंगे? एक करेगा, एक से दूसरा करेगा, दूसरे से तीसरा करेगा। पावर ऑफ वन, ओनली वन पर्सन हैज टू स्टार्ट द चेंज एंड चेंज विल रिपल 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 एंड गो टू एवरीबडी एल्स। हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी टू बी दैट वन? वीडियो में आ रहा कैमरा? वीडियो में आ रहा, खींच गई आपकी फोटो। वैसे मैंने ये वाला सेशन इंटरनेट पे जाने नहीं दिया, ब्लॉक्ड है, तो ये इस हॉल के बाहर ये बात कहीं नहीं जाने वाली है, दैट इज 100% सर्टन। नहीं जाना चाहिए, ये अपनी घर की बातें हैं, इसको हम बाहर नहीं भेजते कभी भी, ये कहीं भी नहीं जाएगा ये वीडियो। लेकिन इट्स फॉर अस। जब हमें लगता है ना हम ये कर रहे हैं, तो लोग आजकल कहते हैं बेचारे पेशेंट, उनके साथ इतना गलत हो रहा है। पेशेंट के साथ कोई गलत नहीं हो रहा, पेशेंट तो सिर्फ धनी खो रहा है थोड़ा सा। आए से बेचारे डॉक्टर ऐसा कर्म करके ये जाएंगे किधर? कर्मों की गति, पेशेंट ने कोई गलत कर्म नहीं किया, उसने तो सिर्फ धन खोया, लेकिन डॉक्टर कहां जाएगा ऐसा कर्म करने के बाद? व्हेन वी चार्ज एंड ओवर चार्ज, इट्स नॉट ओनली अ कर्म ऑफ मनी, इट्स ऑल्सो अ कर्म ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि दूसरा परिवार दुखी भी होता है उतने पैसे अरेंज करने के लिए। तो वो कर्म का कॉन्सिक्वेंस सिर्फ धन के रूप में नहीं आएगा, वो दुख के रूप में भी आता है, वो डर और दर्द के रूप में भी आता है, वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी और फियर के रूप में भी आता है। सो बाहर थोड़ा सा प्रॉफिट डिप होगा और उसके बाद इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि आप सोचेंगे मैंने तो कभी इतना सोचा ही नहीं था कि मैं इतना भी कमा लूं। यहां माउंट आबू में एक होटल है, होटल हिलॉक, वहां पे एक बार एक प्रोग्राम किया तो ऐसे ही बात हुई, क्या आप अपने होटल में नॉनवेज खिलाते हो? किसी को मरी हुई शरीर खिलाते हैं क्या ऐसे कोई? तो वो शेफ कहता है वेजिटेरियन कर दे होटल को, क्यों नहीं करना चाहिए? तो उसकी ओनर बोली हिल स्टेशन है। बोला हाँ। कहती आएगा नहीं कोई वैसे उसके बाद? मैं बोला आपकी चॉइस, आपका कर्म, आपको क्या खिलाना है अपने मेहमानों को? शी डिड इट, शी मेड हर होटल वेजिटेरियन, वन ऑफ द टॉप होटल्स ऑफ दिस सिटी माउंट आबू। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद डिप हो गया प्रॉफिट, डिप हुआ। आई आस्क्ड हर आफ्टर 6 मंथ, आई सेड कैसा हुआ? कहती नहीं थोड़ा कम हो गया। आई सेड फिर क्या करना है? कहती कुछ नहीं करना, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है वो सब हटाने के बाद अपने होटल से। लेकिन अभी तालिबाद में, लेकिन वो डिप होने के बाद वो जो चढ़ा it is earning much more than what it was earning that time. और ये ऐसा क्यों हुआ? उसके पे हर चीज के कर्म के पीछे एक रीजन होता है, क्योंकि राजस्थान एंड गुजरात इज मेजोरिटी सात्विक. तो लोग कहने के लगे ऐसे ही होटल में जाना है जहां नॉनवेज होता ही नहीं है, सब पहले से ज्यादा मेहमान आने लग गए. हो गया सिंपल. लेकिन हुआ क्या? धन कमाया राइट कर्मों से, कमाया दुआओं से कमाया. आपको कभी लगता नहीं कि हम हॉस्पिटल में बीमारों को मरे हुए शरीर कैसे खिलाते हैं? ये कभी क्वेश्चन क्यों नहीं करती हेल्थ केयर इंडस्ट्री? डेड बॉडी होती क्या चीज है, ये आपसे ज्यादा किसी को नहीं पता, हमें भी नहीं पता डेड बॉडी होती क्या है. फैमिली की डेड बॉडी तो आप बताते हैं कि फटाफट हटाओ और इसको फटाफट खत्म करो, कि अगर आप इसको घर में रखोगे तो आपके घर में भी बहुत कुछ फैलने लग जाएगा. जो बीमार आया उसकी हीलिंग हो रही है, इतनी इतनी उसको दवाइयां दी जा रही हैं, और वो हीलिंग के साथ साथ उसके मरे हुए शरीर की एनर्जी दी जा रही है उसको. हाँ, ये कैसे वर्क करता है? कौन सी साइंस ये कहती है? जस्ट बिकॉज उसमें प्रोटीन्स है. प्रोटीन्स तो हैं, लेकिन उसमें वाइब्रेशन कौन सी है उस खाने के अंदर? जैसा अन्न वैसा मन. We have to always remember this. जैसा अन्न वैसा मन. उस खाने की वाइब्रेशन कौन सी होती है? किसी दिन 5 मिनट निकाल के गूगल पे जाके सिर्फ वीडियो सर्च करें स्लॉटर हाउस, अच्छे से देख लें कैसे होता है वो स्लॉटर हाउस अंदर, कितना तड़प रहा है वो चीज अंदर उधर, क्या हॉर्मोन्स वो सिक्रीट कर रहा है अपनी बॉडी के अंदर, और फिर उसको हम हेल्थ के नाम पे अपने पेशेंट्स को दे रहे हैं. कैसे दे सकते हैं? कैसे दे? सिर्फ प्रोटीन थोड़ी देना है पेशेंट को, पेशेंट को हीलिंग एनर्जी देनी है. सिर्फ प्रोटीन नहीं दे सकते, हीलिंग एनर्जी देनी है. डॉक्टर्स का बिलीफ सिस्टम समाज के बिलीफ सिस्टम को चेंज करेगा. डॉक्टर्स सारा दिन रब कर रहे हैं पेशेंट्स के अंदर, अंडा तो खाना ही पड़ेगा, नॉनवेज तो खाना ही होगा. आई सी सो मेनी टाइम्स दे विल लुक एट मी विद सो मच पिटी. अच्छा हाँ, आप तो अंडा नहीं खाते ना? अरे बेचारा क्यों फील कराते हो आप सामने वाले को? आप ये वाइब्रेशन क्यों रेडिएट कर रहे हो कि तुम तो हेल्दी हो ही नहीं सकते क्योंकि तुम तो अंडा नहीं खाते हो? इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू. हाँ जी, आप तो अंडा नहीं खाते ना, आप तो ये नहीं खाते ना, तो फिर आपको कमी तो रहेगी ना. ये कौन सा ब्लेसिंग देते हैं हम सबको? क्योंकि ये हमारा बिलीफ सिस्टम है. इसलिए क्यों नहीं हम वो सारी चीजें बताते जो प्रोटीन भी है लेकिन साथ में हाई हीलिंग एनर्जी भी है. मन ने हीलिंग करनी है बॉडी की, मन के ऊपर अन्न का असर हो रहा है, और अन्न वो वाइब्रेशन का डाला जा रहा है जिसमें फियर है, हेट्रेड है, एंगर है, रिजेंटमेंट है, वायलेंस है, डेथ है. वो एनर्जी से कहते हैं हम हेल्थ मिलेगी आपको, नहीं मिल सकती. प्रोटीन मिल सकता है, मन को सुकून नहीं मिल सकता. लेकिन वो तभी होगा जब पहले बैठ के खुद अपनी तो चेकिंग करेंगे, अपनी चेकिंग करेंगे. 3 दिन यहां रहे, भोजन अच्छा लग रहा है? भोजन अच्छा लग रहा है? सादा भोजन, घी की सब्जी, आलू की सब्जी, क्या है उस खाने के अंदर? कड़ी? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उस खाने के अंदर. इतने बल्क में बन रहा है हजारों के लिए, फिर भी अच्छा लग रहा है. पेशेंट्स को खाना ऐसा खिलाना चाहिए. आपको मालूम नहीं है, आपको यहां जो अच्छी फीलिंग आ रही है ना, उसका काम यहां स्टेज पर नहीं किचन में चलता है. वो काम किचन में होता है. मैंने तो कितना एक्सपीरियंस किया है, जब रिट्रीट सेंटर में लोग वर्कशॉप के लिए आते हैं तो मॉर्निंग में एक सेशन होता है, फिर लंच होता है, फिर लंच के बाद दूसरा सेशन होता है. मॉर्निंग में आते हैं तो इतने ऐसे कड़क ऐसा देखते हैं सामने से, ये बहन क्या सुनाने वाली है हमारे को, पता नहीं हमारी कंपनी ने हमें कहां भेज दिया. खाना खा के आते हैं सॉफ्ट. So I always prefer to take post-lunch session over there. क्योंकि सारा काम खाने से हो जाता है. जैसा अन्न वैसा मन. क्योंकि यहां जो अन्न बन रहा है वो बड़ी ही मेडिटेशन वाली वाइब्रेशन से बनता है, जहां परमात्मा की याद की एनर्जी डाली जाती है खाने के अंदर. सिर्फ सही सोच रहे हैं खाना बनाते समय, अन्न की वाइब्रेशन बढ़ जाती है, खाने वाले की मन की स्थिति पर ठीक हो जाता है। ऐसा खाना अपने पेशेंट्स को खिलाओ, जल्दी ठीक होके जल्दी घर जाएंगे, अगर जल्दी भेजना है तो। अगर जल्दी भेजना है तो वो भी कर्म है, वो भी कर्म है। अन्न सात्विक, सात्विक सिर्फ वेजिटेरियन नहीं होता, लेकिन सात्विक मतलब बहुत हाई एनर्जी स्थिति में बनाया हुआ अन्न। आप वापस जाएंगे, आप जहां रहते हैं आपके नजदीक सेंटर्स हैं, सेंटर्स पर बहनें हैं, बहनों को आप अपने हॉस्पिटल में बुलाइए, अपने किचन में भेजिए और बहनों को कहिए किचन में सिखाएं कि खाना कैसे बनाना है हॉस्पिटल के लिए। बिकॉज हॉस्पिटल इज एन एनर्जी ऑफ अ लॉट ऑफ पेन, सो फूड ऑल्सो विल अब्सॉर्ब दैट पेन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव हाई एनर्जी फूड एंड वॉटर, वेरी इंपॉर्टेंट। खुद आप भी बड़े ध्यान से हॉस्पिटल में खाना खाइए और पानी पीजिए, उस खाने और पानी में बहुत दर्द की एनर्जी है वातावरण के कारण, वाइब्रेशंस असर करती हैं। तो हॉस्पिटल के किचन में, घर के किचन में सात्विक खाना। जिस दिन अपने घर में किसी की डेथ होती है उस दिन तो किचन में खाना ही नहीं बनता लोगों के घर। कहते हैं जब तक संस्कार नहीं होगा तब तक खाना नहीं बनेगा। संस्कार करने के बाद पहले नहाएंगे, फिर किचन को धोएंगे, फिर उसके बाद खाना बनेगा। तो अपने परिवार की डेड बॉडी तो रखी नहीं जाती है, और फ्रिज को खोलो तो महीने महीने की पड़ी हुई है। कैसे शमशान घाट के नजदीक घर नहीं लेते, कहते हैं एनर्जी अच्छी नहीं है, अपने ही तो फ्रिज में बना हुआ ऑलरेडी है। तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर, वी हैव टू बी वेरी क्लियर विद एनर्जीज दैट वी आर कंज्यूमिंग। तो अनसात्विक, और जो पीते हैं वो भी सात्विक। ऐसी चीज कैसे पी सकते हैं जो हमारी वाइब्रेशन को घटाएगी, कैसे कर सकते हैं? देवी आत्मा है, डिवाइन आत्मा है, हीलर है, एनर्जी हाईएस्ट होनी चाहिए, हाईएस्ट। वी डोंट नीड हाई फीलिंग फ्रॉम व्हाट वी ईट एंड ड्रिंक, वी हैव टू रेडिएट एट अ हाई फ्रीक्वेंसी। ये सारी चीजें खा पी के तो हमारी वाइब्रेशन घट जाएगी। रात को पार्टी की, सुबह उठी में घुस गए, वेरी अनफेयर, अनफेयर टू आर सेल्फ एंड टू दोज फॉर होम वी आर रिस्पॉन्सिबल। ये मॉरली रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, अटेंशन ऑन कर्म। तो अन्न सात्विक, धन सात्विक, अन्न सात्विक, तो मन सात्विक। ये दोनों चीजें सात्विक करे बिना मन को सात्विक करना थोड़ा सा मुश्किल है, असंभव नहीं, क्योंकि असंभव तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन मुश्किल तो है, क्योंकि धन से अन्न और अन्न से मन। कुछ भी खाने से पहले, पानी पीने से पहले परमात्मा को याद करे बिना नहीं खाना या पीना, क्योंकि उस खाने में बहुत वाइब्रेशन होती है आसपास के, जिसने बनाया है उसकी वाइब्रेशन होती है। जहां तक हो सके अपने घर में अपने हाथ का बना हुआ, फैमिली के हाथ का बना हुआ खाना खाना। एक और नया कल्चर क्रिएट हुआ है, सारा दिन बाहर का खाना खाते हैं। इट्स फूड कुक्ड फॉर मनी, इंटेंशन ऑफ दैट फूड इज प्रॉफिट। वो खाना जो खाएगा बाहर का, उसकी मन और बुद्धि सिर्फ धन से जुड़ती जाएगी, पैसा 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 पैसा। फिर हम कहते हैं आजकल लोगों के लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि वो बाहर ज्यादा खाते हैं। जो आश्रम का बना हुआ खाना खाएंगे वो कहेंगे परमात्मा परमात्मा परमात्मा, जो होटल का खाएंगे वो कहेंगे पैसा पैसा पैसा, सिंपल बात है। क्योंकि किसके याद में बना हुआ खाना खा लिया, घर में फैमिली के लिए मंदिर की तरह खाना बनाए, किचन में भजन चले, बनाने वाला भगवान को याद करे, अफर्मेशंस वो पॉजिटिव थॉट्स खाने में डाले, पावरफुल सोल, पीसफुल सोल, परफेक्ट हेल्दी बॉडी, वी आर अ यूनाइटेड फैमिली, वी एक्सेप्ट ईच अदर, एवरीथिंग इज, ये डालते जाओ खाने में खाने में, घर के लोगों का भाग्य बदल जाएगा। कल आपने डॉक्टर संगीता का अनुभव सुना ना, सिर्फ सुबह सुबह पानी में वाइब्रेशन डाल के बच्चे की मन की स्थिति को चेंज कर दिया, और ऐसे एक नहीं बहुत। अमृत गंगा तट से पानी लाते हैं, बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि गंगा तट पर सारा दिन क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? पूजा, आरती, हाई एनर्जी वाटर। हॉस्पिटल में सारा दिन क्या चल रहा है, तो वहां के पानी की एनर्जी डाउन होती है। हमेशा अपना पानी खुद कैरी करना चाहिए, और वो भी फिर भी पीने से पहले, स्पेशली इन हॉस्पिटल पानी ऐसे नहीं पीना। आप यहां बैठे हैं, आपके पास आपकी पानी की बोतल है, हर 5 मिनट के बाद आपके पास कोई दर्द की बातें करके गया है, अभी वो पानी ने तो अब्सॉर्ब कर लिया सारा। कैन नॉट ड्रिंक दैट वॉटर, कैन नॉट। 10 सेकेंड पॉज करो, सिर्फ 10 सेकेंड पॉज करना है, उसको रुको, उस पानी को अमृत में कन्वर्ट करो। परमात्मा को याद, उसकी शक्तियां, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की सारी शक्तियां इस पानी में है। ये पानी पानी नहीं, अमृत है। मैं परमात्मा का एंजल हूं, प्योर आत्मा हूं, पावरफुल आत्मा हूं, मेरा शरीर परफेक्ट है। 10 सेकेंड में 3 थॉट उसमें डाले, पानी कलयुग से सत्युग बन गया। अब वो पानी पिए। गूगल पे जाएं और एक कॉन्सेप्ट सर्च करें, बिकॉज इट्स अ डीप कॉन्सेप्ट, इट्स कॉल्ड वॉटर मेमोरी। हाउ वॉटर अब्सॉर्ब्स वाइब्रेशंस, वॉटर हैज मेमोरी, एंड 80% ऑफ द बॉडी वॉटर, सो डीप इम्पैक्ट ऑफ वॉटर। कभी भी पेशेंट्स की कंसल्टेशन के बाद वहां का पड़ा हुआ पानी का ग्लास नहीं पीना, नहीं पीना। 10 सेकेंड उसको चेंज करके फिर पीना। प्रॉब्लम्स डिस्कस करते करते पानी का ग्लास सामने पड़ा हो, नहीं पीना। ये सब हमारी संस्कृति में है, जो हम धीरे धीरे छोड़ते आए हैं। पहले हम परमात्मा को याद करके खाना खाया करते थे, आज हम टीवी का रिमोट कंट्रोल उठा के खाना खाते हैं। बस उतना ही चेंज आया जिससे भाग्य बदल गया, अब वापस उसी पर जाएंगे। तो अन्न सात्विक, जो हम पी रहे हैं सात्विक, तीसरा मन सात्विक। सुबह सुबह दिन की शुरुआत ज्ञान से होनी चाहिए, सुबह सुबह अखबार, सुबह सुबह सोशल मीडिया। हीलर है, हीलर हैज टू लीव फॉर वर्क एट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। दुनिया की खबरें सुनकर कभी हीलिंग के लिए हॉस्पिटल में नहीं जाना। योर रीडिंग अबाउट वायलेंस, डेथ, अब्यूज, ये सब भरेंगे, लोअर फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे और फिर हीलिंग करने दे जा रहे हैं। आधा घंटा सुबह अपने लिए ज्ञान अब्सॉर्ब करेंगे, 10 मिनट्स मेडिटेशन करेंगे, 30 मिनट्स फॉर सेल्फ केयर, रिमेनिंग 23.5 आवर्स वाइब्रेट एट अ हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी। टाइम मिलता है सुबह पेपर पढ़ने का या टीवी न्यूज देखने का? टाइम मिलता है? हमें लगता है हमें ये पता होना चाहिए दुनिया में क्या क्या हो रहा है, इट्स नॉट नेसेसरी। हमें ये पता होना चाहिए हमारी अपने अंदर की दुनिया में क्या क्या हो रहा है। हमें कल के अखबार को बदलना है, हमें कल के अखबार को बदलना है, उसके लिए आज के अखबार को पढ़ना बंद करना पड़ता है। क्योंकि जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वैसा हम बनते हैं। वी आर वॉट वी वॉच, रीड एंड लिसन। सो लेट्स नॉट कीप कंज्यूमिंग सो मच फ्रॉम द वर्ल्ड, लेट्स क्रिएट अ वर्ल्ड, नॉट कंज्यूम फ्रॉम द वर्ल्ड। हमें सत्युग बनाना है। तो धन सात्विक, हाँ जी, धन सात्विक, नहीं पहले धन सात्विक, धन सात्विक, धन सात्विक, धन सात्विक, सात्विक, अन सात्विक, सात्विक। जो डॉक्टर वेजिटेरियन खाते हैं वो पेशेंट को बोलते हैं वेजिटेरियन अच्छा होता है, बिकॉज हमारी अपनी कन्विक्शन से ही हम दूसरे को बता पाएंगे। जो डॉक्टर्स कहते हैं नहीं, शाम को एक ग्लास ले लिया तो कुछ नुकसान नहीं, हार्ट के लिए अच्छा होता है, ये डॉक्टर्स ने ही बताया है समाज को सारे, दिस इज गुड फॉर योर हार्ट, दिस इज वेरी डीप कर्मा टू गिव अ रॉन्ग बिलीफ सिस्टम टू सोसाइटी। कितना डीप कर्मा बन रहा है, कितने लोगों के जीवन खराब हुई, कितने परिवार बिखरे, क्योंकि हमने उनको बोल दिया दिस इज गुड। इसका कोई नुकसान नहीं है, इतना ले लिया तो उसका नुकसान नहीं होता है, ये हमने बता दिया। बड़ी रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है, समाज की मान्यताएं बनाती है। ध्यान से, ध्यान से, एंड हिम्मत करें, उनको बोलना शुरू करें कि सात्विक अन्न खाइए। आपका मन सात्विक होगा तो आपका शरीर जल्दी ठीक हो जाएगा। आई हैव सीन वर्कशॉप चल रही है, डॉक्टर कैंसर कॉम्प्लिकेटेड इतनी बीमारियों के बारे में बोल रहे हैं, सडनली सामने से एक उठ के बोलता है, डॉक्टर साहब डाइट कौन सी अच्छी होनी चाहिए? तो कहते हैं हेल्दी डाइट सारी। नहीं बोलते उनको कि नॉनवेज नहीं खाओ, नहीं बोलते, क्योंकि हमें लगता है हमें नहीं बोलना चाहिए ये सब कुछ। स्टडी करें, उसको रिसर्च करें, उसकी इम्प्लीकेशंस को ढूंढ लें, फिर उसको अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करें, फिर सबके साथ शेयर करें, शेयर करें। वी कैन नॉट से एक बार हो गया फिर रेकर तो होता ही है, समाज में फैल रहा है। इट्स अबाउट उसको खत्म करने के लिए हम क्या सिखा रहे हैं समाज को। What are we teaching? What are we teaching? What are we sharing? Let's start sharing the right knowledge. उससे हमारा भी कर्म ठीक हो जाएगा, सृष्टि का भी भाग्य बदल जाएगा। तो जब हम यहां से वापस जाएंगे, हम इस जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए सेंटर पर जाएंगे, फिर से मेडिटेशन का कोर्स करेंगे, सीखेंगे, फिर उसको डेली आधा घंटा अपने जीवन में देंगे और फिर उसको अपनी प्रैक्टिस में लेके आएंगे। तो ऐसा कर्म होगा जो सिर्फ आपका भाग्य नहीं, आपसे अनेकों का भाग्य बदलने वाला है, अनेकों का भाग्य बदलने वाला है। सो धन, अन्न, मन और तन सात्विक, तो किसी को जाकर पूछने की जरूरत नहीं कि मेरा भाग्य कैसा होने वाला है। हम सब यहां आते हैं, इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं और हमारे जीवन में उसके अनुभव आते हैं, और सबसे बड़ी सेवा होती है अपना अनुभव औरों के साथ शेयर करना। टू सी वेदर इज दिस प्रैक्टिकली पॉसिबल। बोल तो दिया इन्होंने कि रेफरल नहीं, कमीशन नहीं, इनको क्या पता, ये थोड़ी हमारे हॉस्पिटल में काम करती है बहन। तो फिर हम उनसे सुनते हैं जो एक्चुअली हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। डॉक्टर नितिका, सीनियर कंसल्टेंट, मैक्स हॉस्पिटल, गुड़गांव। एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे।
शांति दीदी ने कर्मों और भाग्य का इतना सुंदर अमेलगमेशन बताया, तो वहां से यहां तक आने के लिए भी वो कर्म ही है श्रेष्ठ, जो हम सीखने आए थे यहां पे और उनको रेप्लिकेट करते हैं अपनी कर्म भूमि पे। क्योंकि कभी हॉस्पिटल को उससे इक्वेट नहीं करा मैंने पहले। मीन ऑलवेज मैं बहुत एथिकल प्रैक्टिस करती हूँ, कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और जब मैं पहली बार टीवी में सुना, 8 years हो गए मुझे ज्ञान में, मेडिकल कॉन्फ्रेंस में 5 years पहले आई थी। सो मैं, मुझे बहुत अच्छा सब लगा, तो मैं सबसे शेयर करती थी तो सब मुझे कहते थे, हाँ तुम तो वैसे ही, तुम्हें सब कुछ अच्छा लगता है ना, तो तुम्हें सब कुछ अच्छा लगता है। इसीलिए आई ऑल्सो सेड यस राइट, अच्छा ही लगता है। पर एंड आपको ये भी कभी कभी आई थिंक लगता होगा, जस्ट आई एम शेयरिंग इट, कि अभी हम यहाँ पे हम इतने प्योर एनवायरनमेंट में हैं, वहां पे तो ऑल एनर्जीज आर वर्किंग। हम जाके बोलेंगे, थोड़े दिन हमें लगेगा, हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम बिजी हो जाएंगे, फिर हम सेंटर कैसे जाएंगे? बहुत डिफिकल्ट है, कैसे टाइम निकालना आधा घंटा सुबह। और फिर हम सेंटर जाते भी हैं, कई बार जाते हैं तो फिर सोचते हैं कि वो जो वो टीचिंग्स है वो हम अपने प्रैक्टिस में यूज कैसे करेंगे. मतलब एज अ डॉक्टर पेशेंट इतना सिंक नहीं करता, बट यू नो वो डिवाइन प्रेजेंस जो हम यहाँ फील कर रहे हैं, वो कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं परमात्मा ईश्वर, वहां से अगर हमें बाबा तक आना है ना तो हमें उसको फील करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो हमें हेल्प करता है हर चीज में, जैसे एक पेरेंट हेल्प करता है. तो अगर पेरेंट की हेल्प और कॉन्शियसनेस चाहिए तो हम वहां जाते हैं, और वो हेल्प कैसे करता है ये भी बहुत कमाल है. और फिर जब वो हेल्प करता है ना तो बाकी थोड़े अगर आसपास हिला भी रहे होते हैं ना तो हम कहते हैं बाबा है. तो उस जर्नी के लिए वहां तक जाना है. यहां तक की हेल्प मिलती है कि आपने परफेक्ट सब कुछ किया, एवरीथिंग गुड, एंड समहाउ यू नो समटाइम्स वी डू परफेक्टली राइट एवरीथिंग, बट द अदर पर्सन जो हमारा पेशेंट है वो समझ नहीं पा रहा हमें. तो इमिजिएटली वो जो कल से हम मेडिटेशन सीख रहे थे ना, हम जा रहे हैं ऊपर परमधाम, बड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है इनिशियली, बट क्योंकि दीदी ने फेल करा दिया, नाउ वी आर टूडे कॉन्फिडेंट विल बी डूइंग इट. तो उसको भी अगर हम उस डिवाइन लाइट में एनसर्कल करके जब उनके पास जाते हैं ना, तो जैसे दीदी कहती है ना, हमारी हायर स्थिति उस पर काम करती है, वो करती है. एंड दिस जो हमारा जो प्रेयर का एक सिस्टम शुरू होता है ना, आई स्वेयर आई डिडंट नो इतनी सेवा करी है उसने, और मुझे ये पता नहीं लग रहा था, मुझे सीरियसली नहीं पता लग रहा था कि वो जो प्रेयर हम हर बार कर रहे हैं वो सेवा कर रहा है. मैं तो अपनी ही कर रही थी सेवा, कि मैं तो कह रही थी बाबा जल्दी आ जाना. अब मुश्किल वर्ड नहीं यूज करते और प्रॉब्लम भी नहीं यूज करते, प्रॉब्लम से सिचुएशन में कर दिया है हमें बाबा ने ट्रांसफॉर्म. अब हम किसी चीज को प्रॉब्लम नहीं कहते, बट वो सर्विस करती है. जो नर्सेज आपके साथ है उनकी सर्विस करती है, हमारे एनेस्थेटिस्ट जो है वो सर्विस करती है. बीच में रोक के भी अभी कभी मैं भी अगर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती हूँ ना, 4-6 घंटे चल गया कुछ, तो कहते हैं मैम एक प्रे कर लो, दोबारा सेटल हो जाएगा सब कुछ. दैट्स द पावर, एंड दिस इज वॉट वी लर्न एज वी ग्रो, एज वी लिसन टू दिस. मुरली सुनी सबने, वर्ड सुना यहाँ पे, कुछ लग के तब वहां बैठ के ना, तब जब आए नहीं थे तो लगता था ये मुरली पता नहीं अभी हम डॉक्टर क्या मुरली सुन के करने वाले हैं. बहुत जबरदस्त स्पिरिचुअल जागन्स मिलते हैं हमें इस मुरली से. एक जागन है बालक सो मालिक, हाउ कैन अ डॉक्टर यूज दिस. हाँ, इतने सारे लोगों में, सो मेनी पीपल, सो मेनी थिंग्स, सो मेनी डिसीजन टू बी मेड, बट ये कहता है कि आप राय दो एंड डिटैच हो जाओ. अगर आपकी राय सही होगी वो फ्लावर करेगी, बहुत इंपॉर्टेंटली, क्योंकि वो हमारा अपना एक्सपीरियंस बन गई तो वो फ्लावर करेगी. जैसे छोटी छोटी चीजों के आंसर खुद में मिले, जब यहां आए सोल के संस्कार पता लगे, सोल के गुण पता लगे, तो अपने साथ जो खुद किया, जो मैं अपने बेटे के साथ इतना टाइम से, ही इज नाउ 21, जो मैंने इतने साल मुझे समझ नहीं आता था व्हाट इज द इशू विद हिम. मैं लेडी हार्डिंग की इतना पढ़े, इसको क्या प्रॉब्लम है, क्यों क्यों क्यों. बट उस टाइम पे व्हाट इज द संस्कार ऑफ द सोल, वो गर्भ में सब संस्कार कैसे उसमें काम करते हैं, और कैसे हम उसको 15 साल बाद भी नॉलेज लेके हील कर पाए हम. इट वॉज अ ह्यूज चेंज. और फिर वहां तक वो रुकती नहीं है, क्योंकि वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बन गया. तो जो हर पेशेंट, बिकॉज आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट, वो हर पेशेंट आता था उसको वो ऑटोमेटिक जा रहा था. तो हमने कहा इसको प्रोग्राम बनाते हैं. वो प्रोग्राम भी कब बन जाता है वो भी नहीं पता लगता ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि रिजल्ट्स आ जाते हैं. देखा सडनली सिजेरियन रेट कम हो रहा है, अरे इतना कम हो गया कि 18% हो गया, ये कैसे हो गया. तब एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है. सो स्पिरिचुअलिटी डज एवरीथिंग मैजिकली. आज यहां पे भी वो डिवाइन मदर बेबी प्रोजेक्ट, जो हम सब अपने अपनी रीति से, अपनी मेडिटेशन की पावर से यूज करके पेशेंट्स को भी सिखाते हैं, मदर्स को भी सिखाते हैं, एक्सपेक्टिंग फादर्स को भी सिखाते हैं, क्योंकि जब वो सोल बन रहा है अगर हम उस समय उसको एम्पावर करते तो इट्स ह्यूज। आप उसको और डिटेल में इवनिंग में सुनेंगे। सो इट्स सर्जरी, इट्स क्रिएटिंग अ डिवाइन लाइफ, एवरीथिंग एड्स ऑन। ये जो सच्चे दिल पे साहेब राजी, सब कुछ काम करता है। ये मेडिकल प्रैक्टिस में भी एज अ डॉक्टर काम करता है। ये जागंस दे हैव ह्यूज मीनिंग, बट सुनने रोज पढ़ते हैं। खाना रोज अच्छा मिलेगा तभी हेल्थ रहेगी। पता होने से कि अच्छा खाना है तो भी हेल्थ नहीं रहती है। जिस दिन खाते हैं उस दिन हेल्दी होते हैं। एंड जो रेजिस्टेंस भी थोड़ी बहुत जो आती है ना, बिकॉज जब आई मीन मेनी ऑफ यू सिटिंग देयर वुड बी टेलिंग दिस टू मी कि हाँ वी आर वेरी ऑनेस्ट एंड वी आर नॉट इन दिस सिस्टम एट ऑल। बट व्हेन स्पिरिचुअलिटी टेल्स यू कि अगर हम नहीं ले रहे उसका कुछ भी रेफरल का कट एंड ऑल, बिकॉज वी आर ऑनेस्ट एंड मेनी ऑफ यू वुड बी, बट पेशेंट को भी तो नहीं जा रहा। दैट्स ऑल्सो रॉन्ग कर्मा, स्पिरिचुअलिटी सेज। ये तो मेरे को, तो मेरा तो स्विच ही चेंज हो गया जब मेरे को ये समझ में आया। अगर मुझे पता है मैं उसका बेनिफिट कर सकती हूँ और मैं नहीं कर रही, आई एम जस्ट सेविंग माई सेल्फ, मैंने कुछ नहीं किया। तो वो जब शुरू किया तो उसमें तो रेजिस्टेंस वाज लाइक अब कैसे, पेशेंट इनके पेशेंट को कैसे दिया जाए, उनके नहीं दिया जाएगा बहुत। पर धीरे धीरे क्या काम कर रहा है, बाबा काम कर रहा है, डिवाइन प्रेजेंस काम कर रही है, वो रोज की पावर जो उस ज्ञान में मिल रही है वो काम कर रहा है। आज वो प्लेटफॉर्म है हमारे हॉस्पिटल में, मैं मैक्स में हूं, कि मैं बहुत प्यार से उनको बोलती हूँ आप जाओ यहाँ मैक्स लैब में, आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। दिस इज द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि हम विजुअलाइज करते हैं कि हाँ जहां हम हैं हम वहीं का विजुअलाइज कर सकते हैं पहले, उसके बाद फिर और धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जहां 4 साल पहले थी आज उससे बेटर हूं, 4 साल बाद हम और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये सब कर रहे होंगे, आई एम श्योर, बिकॉज वी हैव सच अ ब्यूटिफुल बुके ऑफ फ्लावर्स। परमात्मा के चुने हुए इतने सुंदर फूल हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे वर्ड्स बोलना, क्योंकि मैं 8 साल पहले ये सब नहीं बोलती थी और मुझे कोई बोलता भी नहीं था इतने प्यार से, जैसे हमें यहां बोला जाता है ना। ऐसे लगता है जैसे हमें पकड़ पकड़ के कोई पाल रहा है यहाँ पे, फीलिंग आती है आपको? इनफैक्ट मैंने तो अपने घर में वैसा लोगों को पालना शुरू किया जब मुझे यहां से ऐसे होम की पालना मिली। तो आई एम श्योर कि सब अपना भाग्य बनाने के लिए जो श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाते ही जाएंगे। एंड दिस जर्नी हैज जस्ट बिगन, ऐसे जैसे डॉक्टर संगीता ने कहा था ना, एंड इज गोइंग टू गो मल्टीफोल्ड। ओम शांति।
सिट बैक, 1 मिनट साइलेंस। अपने डिसीशन, अपने कर्म, मेरा कर्म मेरा भाग्य बनाता है। दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, मेरा मैनेजमेंट क्या कहता है, मेरे साथी डॉक्टर्स क्या कहते हैं, सबके साथ रहते हुए, सबको सम्मान देते हुए, सबके साथ प्यार से चलते हुए, सबके संस्कारों को एक्सेप्ट करते हुए, लेकिन कर्म का डिसीजन मेरा अपना होगा। मेरा कर्म मेरा और मेरे परिवार का भाग्य बनाता है। आई एम डिवाइन बींग, I only give, 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 and give. Purpose of my life, सबको दुआएं देना और घर पे बहुत सारी दुआएं कमा के लेके आना। Purpose of my life, वो व्हाइट सर्कल का एनर्जी फील्ड, वो मेरा ऑरा, व्हाइट डिवाइन संस्कार और श्रेष्ठ कर्म उससे बनता है। सही कर्म मुझ आत्मा को पावरफुल बनाते हैं। परमात्मा शिव बाबा मेरे साथ है, मुझे सपोर्ट दुनिया से नहीं मांगने, भगवान की सपोर्ट मेरे साथ है। उसकी श्रीमत पर चलते हैं, सत्य की नाव हिलती है डुलती है, लेकिन सत्य की नाव कभी डूबती नहीं है।